25 मिलियन डॉलर की लागत के बाद सिडनी के हार्बर ब्रिज पर जल्द दिखेगा स्वदेशी समुदाय का झंडा। बढ़ते ऊर्जा संकट के लिए लेबर पार्टी ने दिया पिछली सरकार को दोष और भारत में अग्निपथ योजना को लेकर अभी भी सड़कों पर उग्र प्रदर्शन। अब खबरें विस्तार से। खबर है कि आदिवासी समुदाय का झंडा जल्द ही सिडनी हार्बर ब्रिज पर लहराता हुआ दिखाई देगा। दरअसल न्यू साउथ वेल्स सरकार ने वादा किया है कि वर्ष के अंत तक तीसरा ध्वज स्तंभ स्थापित किया जाएगा और इसके लिए कुल 25 मिलियन डॉलर आवंटित किए जाएंगे। सरल भाषा में समझें तो अब हार्बर ब्रिज पर ऑस्ट्रेलियाई ध्वज और न्यू साउथ वेल्स ध्वज के साथ आदिवासी समुदाय का झंडा भी फहराया जाएगा। हालांकि इस घोषणा के बाद प्रीमियर डोमिनिक पेरोटे ने यह भी माना कि वो ये जानकर हैरान हैं कि इसकी लागत 25 मिलियन डॉलर होगी।
I'm even surprised it takes this long. I mean, I made the announcement a while ago and the first brief that came back was it'd probably take 2 years to do. I mean, I'll climb up there, I'll go to Bunnings myself and climb up there and put the pole up. But apparently it does. Apparently that's the costing. And I think it's an important decision that we've made. I think it brings unity to our country and it's a small price to pay for that unification.
आपको बता दें कि झंडे के खंभे लगभग 20 मीटर ऊंचे हैं, जो 6 मंजिला इमारत के बराबर हैं। साथ ही झंडों को खास तौर पर बनाया जाता है जिससे कि वो सभी मौसम का सामना कर सके। लेबर पार्टी का कहना है कि वो उस मॉडल के साथ खड़ी है जिसमें चुनाव अभियान के दौरान उसने कहा था कि बिजली बिलों को $275 प्रति वर्ष कम किया जाएगा। हालांकि प्रमुख दल इस बात को लेकर असमंजस में है कि ऑस्ट्रेलिया के बढ़ते ऊर्जा संकट के लिए किसे दोषी ठहराया जाए। लेबर पार्टी का कहना है कि पिछली सरकार ने इस विषय पर बहुत गलतियां की हैं जिसका भुगतान देश कर रहा है। पिछली सरकार एक दशक में ऊर्जा में निवेश करने में विफल रही है। फेडरल विपक्ष के नेता पीटर डटन ने ABC के अंदरूनी सूत्रों से कहा कि गलती चारों तरफ से हुई है।
We were agnostic in terms of the technology or the energy source for it. This is the point. Labor would have turned off coal years ago. Their argument, Chris Bowen's argument, still is this very day to exclude gas and coal. This is an argument over the last fortnight about firming up.
रोजगार मंत्री टोनी बर्क ने स्काई न्यूज़ से कहा कि 10 साल की गलतियों को सुधारने में समय लगता है।
Renewables are the cheapest form of energy. But if you want to get your renewables and your battery storage onto the grid, you need to improve transmission. The energy market organisations have been putting this forward for a long time. Previous government refused to act. It's a significant part of the problem right now. It'll deliver that downward pressure on prices. We'll get it done.
कड़ाके की ठंड, बढ़ते किराए की कीमतें और इसके साथ कोविड और फ्लू, इस कार्यभार से लड़ने के लिए सहायता सेवाएं मदद मांग रही हैं। एक डेटा के अनुसार इस वक्त लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हैं। वेसाइड चैपल संकट में फंसे लोगों की मदद करने के लिए जनता से तत्काल सहायता की अपील कर रहा है। इस विषय पर CEO और पादरी जॉन ओवन ने ABC ब्रेकफास्ट को बताया।
Tuesday night is the longest night of the year and it's the coldest night of the year as we head into the winter solstice. So over the last few weeks as the weather has turned colder and electricity bills are starting to pile up, we're seeing about 150 people a day coming into our centres in Bondi Beach and King's Cross seeking love, support and some warmth. Coming out of the last 2 years of lockdowns, we would expect to see the same faces, but we're seeing new faces every day in both of our centres.
न्यू साउथ वेल्स सरकार पहले घर खरीदारों के लिए एक 780.4 मिलियन डॉलर की आवास योजना शुरू कर रही है। आपको बता दें कि इस योजना में लेबर पार्टी की फेडरल चुनाव नीति के जैसी कई समानताएं हैं और इस कार्यक्रम के तहत शिक्षकों, नर्स, पुलिस, अकेले माता पिता और 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग अतिरिक्त सहायता ले सकेंगे। इस योजना के तहत योग्य परिवारों और लोगों को कुल राशि के 2% का योगदान मिलेगा। राज्य के कोषाध्यक्ष मैट कीन का कहना है कि इस पहल का उद्देश्य लोगों के लिए इस महंगाई के समय में घर खरीदना आसान बनाना है।
What we're doing is contributing up to 40% of the equity for a new home and 30% for an existing home. It'll be eligible for people earning up to $90,000 per annum or couples earning up to $120,000 per annum. And the value of the home that it'll be eligible for is up to $950,000 for those in metropolitan areas and $600,000 for those in regional areas.
विक्टोरियन सरकार ने निजी व्यवसायों के साथ एक नए कार्यक्रम की घोषणा की है जिसका उद्देश्य सैकड़ों कैदियों को उनकी रिहाई के बाद नियोजित देखना है। रिलीज के बाद रोजगार के अवसर कार्यक्रम के तहत कई कपड़ा और खाद्य थोक व्यवसाय 225 लोगों को रोजगार प्रदान करेंगे। प्रीमियर डैनियल एंड्रयूज का कहना है कि इस परियोजना से पूर्व कैदियों को अपने जीवन को पटरी पर लाने और फिर से अपराध को कम करने में मदद करने की उम्मीद है। विक्टोरियन जेलों के अंदर व्यावसायिक प्रशिक्षण और शिक्षा द्वारा रोजगार के अवसरों का समर्थन किया जाएगा जिसमें वेयरहाउसिंग, खाद्य प्रसंस्करण, सामान्य रखरखाव और कपड़ा जैसे जेल ट्रैक सूट और गद्दे बनाना शामिल है। अब खबरें भारत से। केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं और विपक्ष के साथ देश के युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं। इस योजना का विरोध करते हुए AIMIM के प्रमुख असुद्दीन ओवैसी ने इसे गलत निर्णय बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सेना भर्ती नीति को वापस लेना होगा, जैसा कि उन्होंने 3 कृषि कानूनों के वक्त किया था।
गलत फैसला है, देश के हित में नहीं है और हम देश के प्रधानमंत्री इसको इस तरह समझ रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉइज हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेक्चरर्स हैं। आप प्रधानमंत्री बड़ा वादा किए थे 2014 में कि वन रैंक वन पेंशन, यहाँ तो यहाँ रैंक है ना यहाँ पे पेंशन है और 1,00,000 से ज़्यादा वैकेंसीज हैं हमारे सिपाहियों की। चीन बैठा हमारी ज़मीन पर, पाकिस्तान से हमको खतरा है। आप इस तरह का गलत हरकत किए हैं, गलत फैसला है। देश के प्रधानमंत्री को फौरन, क्योंकि उनके गलत फैसले की वजह से आज नौजवान भारत में रोड पर निकल आया है, तो उनका ये काम है कि फौरन जिस तरह उन्होंने लैंड लॉस को और फार्म लॉस को वापस लिया, देश के प्रधानमंत्री को अपना इस TOD का फैसले को वापस लेना पड़ेगा।
प्रदर्शनों में उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे आगे हैं और हिंसक प्रदर्शन का जिक्र करते हुए बिहार भाजपा अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि विरोध करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन प्रशासन के इशारे पर लोगों को निशाना बनाना गलत है।
देखिए, विरोध करने का हक किसी को भी है, विरोध करने में कोई बुराई नहीं है, हम सब अलग अलग दल के हैं, लेकिन इस तरह से प्रशासन के द्वारा व्यक्तियों को टारगेट करना, प्रशासन के द्वारा एक खास पार्टी के दफ्तरों को जलाने करना और 300 मधेपुरा में जो हुआ है 300 पुलिस दर्शक बन करके बैठी हुई है, क्या पुलिस पे कार्रवाई हो रही है? तो ये हम लोग शासन के हिस्सा हैं और इस तरह से जो कहीं हिंदुस्तान में नहीं हो रहा वह बिहार में हो रहा है, यह बहुत गलत है और भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर मैं बिल्कुल इसका विरोध करता हूं और इस तरह की घटनाएं हर हालत में अगर नहीं रोकी गई तो यह किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा।
इस विषय पर केंद्र मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि हिंसा एक सही तरीका नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार आपकी चिंताओं को गंभीरता से सुन रही है।
मेरा एक और देश के युवाओं से ये अनुरोध भी है, अपील भी है कि हिंसा का रास्ता अपनी बात रखने के लिए ठीक नहीं है। अग्निवीर युवाओं के हित में और देश को और सुरक्षित बनाने के लिए, एक युवा आर्म फोर्सेस बनाने के लिए उस दिशा में निर्णय लिया गया है और इसके सभी पहलुओं को जानने की आवश्यकता भी है। आपके जो भी कंसर्न है, जो भी विषय है, उसको सरकार गंभीरता से सुन भी रही है और मुझे लगता है आगजनी करने से, हिंसा फैलाने से, उपद्रव मचाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि कुछ लोग अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेंकने के लिए अगर करना चाहते हैं तो ये भी उचित नहीं है कि बच्चों के हाथ में झंडा देकर कोई निकाल देता है, कोई छोटे छोटे बच्चों को सड़कों पे निकालता है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर भारत सरकार उत्साहित है। केंद्र स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने लोगों से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस समारोह में शामिल होने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वो गुजरात में स्टैचू ऑफ यूनिटी से समारोह का नेतृत्व करेंगे।
मैं सभी को आग्रह करता हूँ कि योगा दिन के अवसर पर आप जहाँ हो वहाँ योगा कार्यक्रम में जुड़िए। मैं एकता नगर में योगा दिन के अवसर पर योगा के कार्यक्रम में उपस्थित रहूंगा, योग करूंगा। आइए सब लोग योगा के कार्यक्रम के साथ जुड़िए।
अब सुनते हैं डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 53.99 रुपये और अमेरिकी डॉलर की तुलना में एक ऑस्ट्रेलियन डॉलर की कीमत 70 सेंट्स थी। अब खबरें खेल जगत से। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का आखिरी मुकाबला आज देर रात खेला जाएगा। आपको बता दें कि 5 मैचों की ये सीरीज इस वक्त 2-2 पर है और आज रात जीतने वाली टीम सीरीज भी जीत लेगी। दक्षिण अफ्रीका ने सीरीज के पहले 2 मैच जीतकर शानदार शुरुआत की, लेकिन फिर भारत ने बाद के 2 मैच जीतकर जबरदस्त वापसी की। बतौर कप्तान ऋषभ पंत की ये पहली सीरीज है और इस मैच को जीत वो इसे यादगार बनाना चाहेंगे। लेते हैं मौसम की जानकारी। बात करते हैं कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल की। शुरुआत करते हैं पर्थ से, जहां दिन में आंशिक बादल रहने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 9 डिग्री सेल्सियस। एडिलेड में कल बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 16 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न में कल हल्की बारिश की संभावना रहेगी। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 10 डिग्री सेल्सियस। मेलबर्न के बाद देश की राजधानी कैनबरा की, जहां कल आसमान में आंशिक बादल रहेंगे। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 4 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 15 डिग्री सेल्सियस। बात करते हैं सिडनी की, जहां कल सुबह हल्की बारिश हो सकती है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 19 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। ब्रिस्बेन में कल आंशिक बादल रहने की संभावना है। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 12 डिग्री सेल्सियस। डार्विन में कल मौसम साफ रहेगा। यहां का अधिकतम तापमान रहेगा 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहेगा 20 डिग्री सेल्सियस। अंत में बात कर लेते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। यहां का तापमान रहेगा अधिकतम 32 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। इसी के साथ समाचार समाप्त होते हैं। बाकी की खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट और फेसबुक पेज से जुड़ सकते हैं। वेबसाइट का लिंक आपको पता ही होगा, www.sbs.com.au/hindi।